आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक क्षितिज का पार्ट 3, उपभोक्तावाद की संस्कृति। इस निबंध के लेखक हैं श्याम चरण दुबे जी। तो स्टूडेंट्स, पाठ शुरू करने से पहले हम लोग लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, इसीलिए आप लोग अपने अपने पेज के बुक के पेज नंबर 34 पर आ जाइए। ठीक है, तो पेज नंबर 34 पर शुरू करते हैं श्याम चरण दुबे जी का जीवन परिचय। श्याम चरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में PhD की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये जो श्याम चरण दुबे जी थे, इनका जन्म कब हुआ था? 1922 यानी 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान यानी कि ह्यूमन साइंस में PhD की उपाधि ली और भारत के अग्रणी यानी बहुत ही जाने माने समाज वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने कार्य किया। और सन 1996 यानी 1996 में इनका देहांत हो गया। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास और समाज शास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने नाम पढ़े, ये उनकी कुछ मुख्य पुस्तकें रही हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण और स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोफेसर दुबे हैं, इन्होंने बहुत से विश्वविद्यालयों में पढ़ाया भी है, कई मुख्य संस्थानों में काम भी किया है और इन्होंने जीवन, समाज, संस्कृति जैसे विषयों पे अपने विचार लोगों के सामने समय समय पर प्रस्तुत किए हैं। कठिन से कठिन जटिल विचार यानी कि कठिन से कठिन विचारों को भी बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसानी से ये हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। अब देखिए, पाठ परिचय दिया हुआ है कि इस पाठ में आपको पढ़ना क्या है। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो निबंध लिखा गया है, ये क्यों लिखा गया है? कि हम बाजार की गिरफ्त में, यानी बाजार के हम गुलाम बनते जा रहे हैं, उसकी कैद में आते जा रहे हैं। लेखक का जो विचार है वो ये है कि जो हमें विज्ञापन दिखाए जाते हैं, चमक दमक के साथ चीजों को प्रस्तुत किया जाता है, तो हम इसी कारण उसे खरीद लेते हैं। किसी भी चीज का अगर आप देखते होंगे, विज्ञापन आ रहा है, टीवी में ऐड देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो हम वो खरीद लेते हैं। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि क्या वाकई में हमें उस चीज को खरीदने की जरूरत है, या फिर क्या उसके गुण कैसे हैं, उसकी क्वालिटी कैसे है, ये सब हमें मतलब नहीं रहता। बस विज्ञापन अच्छा लगा और हमने ले लिया। और कुछ चीजें हम लेते हैं प्रदर्शन करने के लिए, ना दिखावा करने के लिए। ये संपन्न वर्ग जो हमारे, ऊंचा वर्ग जो हमारा यहाँ कहा जाता है, उनकी जीवन शैली ऐसी होती जा रही है कि वो कई चीजें सिर्फ दिखावे के लिए ही खरीद रहे हैं। और जब वो खरीद लेते हैं तो सामान्य लोग ललचाई नजरों से उसे देखते हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में भी इच्छा जागृत हो जाती है कि काश ये वस्तु हमारे पास भी होती, काश इस वस्तु को हम भी खरीद पाते। और इसी वजह से समाज में दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं और भी आगे बढ़ेंगी। लेखक ने कहा है कि जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति बढ़ेगी, है ना, ये दिखावा बढ़ेगा, लोग दिखावे के लिए चीजें खरीदना चाहेंगे, वैसे समाज में अशांति बढ़ेगी और विषमताएं, लोगों के बीच में भेदभाव, ऊंच नीच सारी चीजें भी बढ़ती जाएंगी। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 35 पे निबंध को शुरू करते हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है, उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में, उत्पाद तो आपके लिए है पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पादों को समर्पित होते जा रहे हैं। अब देखिए लेखक कैसे शुरू करते हैं कि धीरे धीरे हमारे आसपास हर चीज बदल रही है, है ना, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, यानी लोगों की जो जीवन शैली है वो बदल गई है, अब लोग नए तरीके से, उनके जो रहने का तरीका है वो बदलाव आ गया है, उसमें नए तरीके से अपना रहन सहन को विकसित कर रहे हैं और इसी के साथ एक नया जीवन दर्शन उभर रहा है, उपभोक्तावाद का दर्शन। उपभोक्ता कौन होता है? जो चीजों का उपभोग करे, जो भी वस्तुएं या जो उत्पाद बाजार में आए, जो उसको उसका उपभोग करे यानी उसका उपयोग करे, वही उपभोक्ता कहलाता है। तो वो कह रहे हैं कि चारों ओर क्या जोर है, उत्पादन बढ़ाया जाए, यानी हमारे जो भी वस्तु है, हम अगर कुछ बना रहे हैं तो हम लगता है उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेच दें, है ना, ये व्यापार के ऊपर ही केंद्रित होकर रह गए हैं। अब सुख के लिए हैं ये चीजें, हमारे लिए हैं, हमारे उपयोग के लिए हैं, हमारे सुख के लिए हैं, लेकिन अब हमारे सुख की व्याख्या भी बदल गई है। वो कह रहे हैं ये हमारे हैं तो हमारे लिए ही, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारा चरित्र बदल रहा है, हमारा रहन सहन बदल रहा है और अब इन उत्पादों को हम अपने ऊपर हावी करते जा रहे हैं, इनके गुलाम बनते जा रहे हैं, अपने आप को हमने इनके आगे समर्पित कर दिया है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए, टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। यह सब करके जो तीन चार पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पतियों और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है, जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। अब वो क्या बता रहे हैं, हमारे बाजार में ऐसी कई चीजें आपको मिल जाएंगी जो आपको दिखावे की ओर मोड़ेंगी, है ना, आप दिखावे के लिए उन्हें खरीदना चाहेंगे। जैसे अब लेखक उदाहरण देते हैं किस चीज का, टूथपेस्ट का, कि अगर आप टूथपेस्ट खरीदना चाह रहे हैं तो आपको बहुत से विज्ञापन मिलेंगे, हर कंपनी जी तोड़ मेहनत में लगी है कि वो अपना उत्पाद कैसे बेचे, है ना, तो कोई बताता है कि हमारा टूथपेस्ट लीजिए, दांतों को मोती जैसा चमकीला बना देगा, कोई मुंह की दुर्गंध को हटाएगा, मुंह में बदबू नहीं आएगी, खुशबू आएगी, किसी से आपके मसूड़े मजबूत हो जाएंगे, कोई आपको पूरी सुरक्षा देगा। इस तरह अलग अलग पेस्ट हैं जिसमें से आपको जो सही लगता है चुन लीजिए, किसी में बबूल या नीम के गुण है, कोई ऋषि मुनियों ने स्वीकारा है, कोई किसी से बना है, कोई किसी से बना है, तो आपको जो अपने लिए अच्छा लगे आप चुन लीजिए। और अब जब पेस्ट अच्छा चुना है तो ब्रश भी तो अच्छा लेंगे, ब्रश का रंग देखिए, आकार देखिए, बनावट देखिए, पहुंच देखिए, उसकी सफाई करने की क्षमता कितनी है, एक से बढ़ के एक गुण मिलेंगे आपको। और जब आपने ब्रश और टूथपेस्ट खरीद लिया है तो मुंह की दुर्गंध हटाने के लिए आपको माउथ वॉश भी चाहिए होगा। ऐसे ही करके चीजों की सूची बढ़ती जाती है, लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि बिल बड़ा हो जाएगा, इसीलिए अभी हम यहीं पे रहने देते हैं। अगर आप ये चीजें खरीदेंगे तो आप क्या खरीदना चाहेंगे, जो बहुत ही बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड हो, यानी ब्रांड का नाम भी बड़ा हो और आपने उसके विज्ञापन कई बार देखे हो, तभी आपको लगेगा कि हाँ इतना इसका विज्ञापन आता है, इतनी बार ऐड आता है, यानी अच्छा ही होगा। आप खुद सोच के देखिए, आपके घर में जो टूथपेस्ट आता है वो कौन सा आता है और उसके आने का कारण क्या है, जरूर आपने विज्ञापन ही देखा होगा उसका, है ना। आगे बढ़ते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है, हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मन पसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं के ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है, पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए, अब तो इस सूची में दर्जन दो दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। ठीक है, तो लेखक कह रहे हैं कि सौंदर्य प्रसाधन यानी ऐसी चीजें जो आपकी सुंदरता को बढ़ाएं, उनकी सूची तो बाजार में इतनी है कि आप गिनती ही नहीं कर पाएंगे, चमत्कार सा लगता है। जैसे साबुन को देख लीजिए, साबुन से तो हर कोई नहाता है, हर कोई इस्तेमाल करता है, तो कितने अलग अलग तरीके से लोग बेचते हैं कि इस साबुन में हल्की खुशबू है, इसे ले लीजिए, आपको तेज खुशबू चाहिए, इसे ले लीजिए, यह साबुन दिन भर आपके शरीर को ताजा रखेगा, यह आपके पसीने को रोकेगा, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करेगा, अरे ये वाला ले लीजिए, ये तो और भी अच्छा है। क्योंकि ये सिने स्टार्स जो हैं, जो फिल्मों में काम करते हैं, उनके सुंदरता का रहस्य है, उनका मनपसंद साबुन है। सच्चाई का अर्थ समझना है तो ये साबुन लीजिए, शरीर को शुद्ध रखना है ये साबुन लीजिए, ये तो गंगा जल में बना है। चमड़ी को नर्म रखना है, मुलायम रखना है, यानी स्किन को बहुत मुलायम रखना है, त्वचा के लिए ये ले लीजिए, महंगा है तो क्या हुआ, सुंदरता तो बढ़ाएगा। ऐसे करके अलग अलग उत्पाद कंपनियां बेच रही हैं। संभ्रांत महिलाएं जो हैं, बड़े बड़ी ऊंची ऊंची घरों की जो महिलाएं हैं, उनके ड्रेसिंग टेबल पे अगर 30,000 का सौंदर्य सामग्री आपको देखने को मिल जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। पेरिस से परफ्यूम आएगा, यहाँ से ये, वहां से वो, जाने कहाँ कहाँ से तमाम चीजें लोग मंगवाते हैं। क्यों? समाज में आपको आपको प्रदर्शन करना होता है, या चीजें आपकी प्रतिष्ठा से जुड़ गई हैं। अगर आप किसी ब्रांड की चीज इस्तेमाल नहीं करते, अरे तो क्या आप कैसे इंसान हैं? पुरुषों की बात लीजिए, पहले पुरुष क्या करते थे, सिर्फ साबुन और तेल से काम चला लेते थे। आजकल कितनी चीजें हैं, तरह तरह की क्रीम है, फेस वॉश है, आफ्टर शेव है, कोलोन्स है, न जाने क्या क्या है। लेखक कहते हैं दर्जन दो दर्जन चीजें ऐसी जुड़ गई हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं, ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से 1-1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम होना जरूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सके, कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। अब क्या बता रहे हैं लेखक, कह रहे हैं इन सारी चीजों को छोड़िए, वस्तु और परिधान को देखिए ना, जैसे कपड़े या कुछ वस्तुएं हो गई, तो नए नए बुटीक खुले हैं, वो चीजों को कैसे बेचते हैं, ये कपड़े लीजिए, ट्रेंडी हैं, ट्रेंड में चल रहे हैं, महंगे भी हैं, अरे ये तो पिछले साल फैशन आया था, ये आप अभी पहन रहे हैं, तो बड़े शर्म की बात है। घड़ी को लीजिए, घड़ी पहले लोग क्यों पहनते थे, समय देखने के लिए। अब लेखक ने यहाँ पे देखिए व्यंग किया है कि अगर अभी भी यही काम लेना हो, घड़ी से अगर अभी भी यही काम लेना हो, यानी घड़ी को ऐसे ही इस्तेमाल करना हो समय देखने के लिए, तो आप अभी भी 400-500 रुपए में घड़ी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी हैसियत जतानी है, दिखावा करना है, तो 50-60 हजार से लेकर 1.5-1.5 लाख की घड़ियां भी बाजार में मौजूद हैं। ऐसे ही चाहे आपको संगीत की समझ है या नहीं है, लेकिन म्यूजिक सिस्टम होना घर में जरूरी है। क्यों? आपको दिखावा करना है, आपको अपने समाज में दिखाना है, आसपास पड़ोसियों को दिखाना है कि देखिए हमारे घर में इतना म्यूजिक सिस्टम है, इतना बड़ा म्यूजिक सिस्टम, इतना महंगा म्यूजिक सिस्टम है। वो अलग बात है कि हमें उसे चलाना भी नहीं आता, लेकिन है तो ना हमारे घर में। ऐसे ही जहां कई लोग कंप्यूटर खरीदते हैं अपनी जरूरत के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए, तो वही लोग कंप्यूटर कुछ लोग क्यों खरीदते हैं, दिखावे के लिए कि देखिए हमारी भी इतनी हैसियत है, हम भी कंप्यूटर रख सकते हैं। खाने के लिए 5 सितारा होटल हैं, वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं, बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप पढ़ने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहां फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, देखिए हर चीज में दिखावा होता जा रहा है। खाने के लिए आप आम जगह भी खा सकते हैं, घर में बना के भी खा सकते हैं, लेकिन लोग 5 सितारा होटल, जिसे हम 5 स्टार होटल बोलते हैं ना, वहां खाते हैं। वहां बड़े बड़े विवाह समारोह होते हैं, शादियां होती हैं दिखावे के लिए। जब बीमार पड़ते हैं तो अच्छे से अच्छा 5 सितारा अस्पताल ढूंढते हैं कि सुख सुविधाएं मिलेंगी और वहां पे कई दिनों तक हमारा अनुभव कैसा रहा, ये चर्चाएं भी चलती रहेंगी। अस्पतालों का भी विज्ञापन आ रहा है, आपने देखा होगा, है ना, उन्हें भी व्यापार की दृष्टि से बेचा जा रहा है कि हमारे अस्पताल में ये खास है, हमारे अस्पताल में ये खास है। पढ़ाई के लिए स्कूलों के बारे में विज्ञापन आ रहे हैं कि हमारा 5 सितारा स्कूल है, बच्चों को ये देता है, ऐसा देता है, वैसा सुविधा देता है, न जाने क्या क्या। और लेखक का मानना है, क्योंकि ये पहले लेख लिखा गया है, कि जैसे 5 स्टार स्कूल बन रहे हैं, हो सकता है कुछ समय से कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बनने लगे। और भारत में ये स्थिति नहीं है, लेकिन अमेरिका और यूरोप का किस्सा बताते हैं लेखक। वहां लोग क्या करते हैं, अपने अंतिम संस्कार के लिए अपनी कब्र का इंतजाम भी खुद ही कर लेते हैं कि जब हम मर जाएं तो ये हमें जगह उन्होंने बुक कर ली है कि हमारी कब्र यहाँ बनेगी, इसके आसपास हरी घास उगेगी, ये फूल उगेंगे, ये संगीत बजा करेगा, ये फव्वारे लगा करेंगे, ऐसी कब्र होगी, ये सुंदरता होगी, ये डिजाइन होगी, ना जाने क्या क्या। तमाम बातें मरने के लिए भी इंसान ने पहले से ही तय कर ली है। नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 37। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावाद समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। अब वो क्या कह रहे हैं, भले ही ये भारत में नहीं है अभी, है ना, कि आप अपने अंतिम संस्कार अपनी कब्र के लिए जगह तय कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है आज अमेरिका में है तो कल को भारत में भी तो हो सकता है ना ये चीज, क्योंकि दिखावे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए लोग न जाने क्या क्या कर रहे हैं। भले ही वो सुनकर किसी को हंसी ही क्यों ना आए, हास्यास्पद यानी हंसी ही क्यों ना आए, लेकिन फिर भी लोग ये करते हैं। ये दिखाई एक छोटी सी झलक उपभोक्तावाद की लेखक ने, है ना, कि हम कैसे उपभोक्ता तो बन रहे हैं, लेकिन हम अपने चीजों का, उत्पादों का गुलाम बनते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं ये विशिष्ट जन का समाज है, बड़े लोगों का, सभ्य लोगों का, अमीर लोगों का, लेकिन जो सामान्य यानी आम जनता है वो भी समाज को, इन चीजों को ललचाई नजरों से देखती है। और वो क्या कह रहे हैं, विज्ञापन की बात कर रहे हैं तो विज्ञापन की ही भाषा में बताते हैं कि यही है राइट चॉइस बेबी। देखिए आप देख सकते हैं कुछ सामान यहाँ पे दिया है, बिस्कुट एक के साथ एक फ्री, साबुन, मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित गुणों से भरपूर, ये है टूथपेस्ट, है ना, सुपर ऑफर, शीतल जल, पानी तक बिकने लगा है, पानी तक का प्रचार होता है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए, ठीक है, अब इस विषय में ये तो इन्होंने बता दिया कि हम कैसे गुलाम बन रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी बातें हम अब पढ़ेंगे। देखिए इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, है ना, ये भारत में हमारी संस्कृति इतनी विकसित क्यों हो रही है, हम चीजों के गुलाम क्यों बनते जा रहे हैं। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का शरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छदम आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, हम भले ही बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, है ना, कि हमारी संस्कृति ये है वो है, हम परंपराओं को लेकर चलते हैं, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं हमने अपनी आस्थाएं, अपनी परंपराएं छोड़ दी हैं, है ना, हम बुद्धि के दास बन रहे हैं, किसके, पश्चिम के, उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं, हमारी अपनी संस्कृति खो रही है, उनकी संस्कृति अपना रहे हैं। आधुनिकता, मॉडर्न जो चीजें होती है, उसकी झूठे प्रतिमान हम अपना रहे हैं। प्रतिष्ठा की, दिखावे की, अपनी इज्जत बढ़ाने की झूठी दौड़ में, अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। बस भागे जा रहे हैं कि हमें सबसे ऊंचा दिखाई देना है, सबसे बड़ा दिखाई देना है। और इसीलिए जो हमारी अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति है, उसे छोड़कर हम एक दिखावे की जिंदगी की ओर बढ़ रहे हैं और आधुनिकता की गिरफ्त में, यानी जो मॉडर्नाइजेशन है, उसके कैद में आते जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 38 पे। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित हो रहा जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। देखिए, जो हम विज्ञापन, जो प्रचार प्रसार किसी चीज का देखते हैं ना, तो हम सम्मोहित हो जाते हैं। एक जादू सा हो जाता है हमारे ऊपर, है ना, हम उसके वश में आ जाते हैं कि इतना अच्छा विज्ञापन है, ये चीज तो जरूर होनी चाहिए। इसका विज्ञापन 10 बार आ चुका है, अगर ये चीज हमारे घर में नहीं दिखेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, समाज में लोग क्या कहेंगे, इतनी भी हैसियत नहीं है, ये भी नहीं ले सकते हैं, अरे ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, अरे ऐसा साबुन इस्तेमाल करते हैं। हर चीज हम दिखावे के लिए कर रहे हैं। हमें ये मतलब ही नहीं रह गया कि ये चीज हमें फायदा दे रही है, नहीं दे रही है, इसकी हमें आवश्यकता है या नहीं है, या अगर हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या लाभ होंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। टूथपेस्ट अगर हमें चाहिए हमारे दांतों को, उससे लाभ क्या हो रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। ये ब्रांड का नाम बड़ा है, इसका हमने विज्ञापन बहुत बार देखा है, ये बड़े लोगों की सूची में आता है, इसीलिए हम इसे खरीद लेंगे। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न वह विज्ञापक शीतल पेयों से, भले ही वे अंतरराष्ट्रीय हो। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, वे हैं कूड़ा खाद्य। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारी में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। अब क्या कह रहे हैं लेखक, कि जो संस्कृति बढ़ रही है उपभोक्तावाद की, इससे क्या होगा, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जैसे जो हमारे पास सीमित संसाधन हैं, उन्हें हम खर्च कर रहे हैं, है ना, दिखावे में बर्बाद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आलू की चिप्स खाने से, या फिर जो बहुत बार विज्ञापन में आया हुआ ऐसा ठंडा पानी पीने से या कोल्ड ड्रिंक पीने से, हमारे जीवन की गुणवत्ता नहीं सुधर सकती, हमारा जीवन अच्छा नहीं बनेगा। भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो, विदेशों से आए हो, पिज्जा बर्गर खाने से हमें कुछ लाभ नहीं मिलेगा, कितने भी आधुनिक हो ये, लेकिन ये कूड़ा खाद्य है। ऐसा यानी कि खाने की ऐसी चीज जो कूड़े के समान है, जो हमें लाभ नहीं बल्कि हानि ही पहुंचाती है। लेकिन न जाने क्यों पिज्जा बर्गर खाने में लोग आजकल अपना स्टेटस समझ रहे हैं, है ना, दिखावे के लिए खाते हैं, जबकि पता है कि इसका कोई भी लाभ नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, फिर भी खाते हैं। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, जो लोग पिज्जा बर्गर खा सकते हैं और जो लोग नहीं खा सकते, उनके बीच में अमीरी गरीबी का वो भेदभाव और तगड़े तरीके से पनप रहा है। इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं अंदर लोगों में एक विद्रोह जाग रहा है, एक अशांति जन्म दे रही है। और लेखक का कहना भी यही है, अगर ये संस्कृति ऐसी बढ़ती रहेगी, हम उत्पादों की कैद में ऐसे ही रहेंगे, तो हमारे जीवन में सिवाय अशांति के और कुछ नहीं होगा। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का हास तो है ही, है ना, हमारी सांस्कृतिक अस्मिता जो है उसका हास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, हमें पता ही नहीं रह गया हमारा लक्ष्य आखिर है कहाँ। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं, हम झूठी तुष्टि के तत्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी ये दौड़, हम पागल हुए जा रहे हैं सिर्फ दिखावे के लिए, है ना, अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, नैतिक मानदंड तोड़ रहे हैं। जैसे क्रीम को क्या कहकर बेचा जाता है, गोरे होने की क्रीम, तो ये काले और गोरे में फर्क दिखाना ही क्यों, है ना, दुनिया में दो रंग हैं, कुछ लोग काले होंगे तो कुछ लोग गोरे होंगे, पर क्या काला होना बुरा होता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसे विज्ञापन देख देख के कहीं ना कहीं सबके मन में ये चीज बैठ गई है कि हमें गोरा होना है, जो गोरा है उसे और गोरा होना है, जो काला है उसे भी गोरा होना है, और काला जो लोग हैं उनके आत्मविश्वास में कमी आ रही है, है ना, वो कहीं जाते हैं तो हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं कि मैं लोगों से कैसे बात करूं। लेकिन बस वही बात है, उपभोक्तावाद की संस्कृति में हम कैद है और हमें हर चीज अच्छे से अच्छी इस्तेमाल करनी है। वो कह रहे हैं भोग की जो लालच की जो सुख सुविधाओं के नाम पे ये जो हम लालच कर रहे हैं इसकी जो हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं ये न जाने कब और कहाँ रुकेंगी, किस बिंदु पर जाके यानी किस स्थान पर जाके हम रुकेंगे। हम तो बढ़ते ही जा रहे हैं अपने विनाश की ओर। ये विकास की संस्कृति नहीं है, इससे हमारा विकास नहीं हो रहा है, हमारा पतन हो रहा है, हम अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। हम झूठी संतुष्टि से जी रहे हैं, स्वार्थी हो गए हैं। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ संस्कृति प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुली रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है, यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। वो क्या बता रहे हैं कि गांधी जी के विचार थे। गांधी जी ने एक बार कहा था कि अगर हमें स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव चाहिए तो हमें दरवाजे खिड़की खुले रखने होंगे, यानी देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक दूसरे की संस्कृति को समझना जानना आदान प्रदान करना आवश्यक है ना। अपने आप को बंद करके ना बैठें कि हम सिर्फ अपने ही विचारों के अपने ही संस्कृति के साथ जिएंगे, ऐसा नहीं है। सबकी संस्कृति को जानें, सबकी संस्कृति में जो अच्छी चीजें हैं उन्हें अपनाएं, लेकिन अपनी बुनियाद पे कायम रहे ना। हमारी जो नींव है, हमारी जो संस्कृति है, अपनी चीजों को छोड़कर यह सब करना गलत होगा। लेकिन हम जो उपभोक्ता संस्कृति में फंस रहे हैं ये हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। हम नैतिक मूल्यों का पतन कर रहे हैं, समाज में भेदभाव की दृष्टि पैदा कर रहे हैं, आदमी लालची होता जा रहा है, स्वार्थी होता जा रहा है, आधुनिकता की दौड़ में अंधा होकर दौड़ रहा है। सब क्या है, हमने अपनी चीजें खो दी हैं। ऐसे हमें कोई संस्कृति नहीं अपनानी है, ये तो हमारा नुकसान ही है। और इसे भले ही अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लेखक ने हमें चुनौती बताई है कि चुनौती है, चेतावनी दे रहे हैं वो, हमें इस खतरे से बचाना चाहते हैं कि अभी भी समझ जाइए कितना बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए चुनौती है ये। कि अभी हमें लग सकता है कि चीजें इतनी बुरी नहीं हो रही हैं, लेकिन जैसे जैसे ये चीजें बढ़ती जाएंगी तो इसकी गिरफ्त में, बाजार की गिरफ्त में जो हम फंस गए हैं उससे बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। कई बार हम बाजार घूमने जाते हैं ये सोचकर नहीं जाते हैं कि चीजें खरीद कर लाएंगे, लेकिन जो वहां की चमक धमक है या चीजें बेचने का जो तरीका है वो हमें मजबूर कर देता है कि हम उसे खरीद लें। जेब में पैसे हैं नहीं हैं, हमें उस चीज की आवश्यकता है या नहीं है, उसके गुण कैसे हैं, क्या वो चीज लाभदायक है, ये सब बातें हम नहीं सोचते, बस हम उसे खरीदने पे न जाने क्यों मजबूर हो जाते हैं। क्या हमारा मन इतना कमजोर है, हम अपने आप पे थोड़ा सा नियंत्रण भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमने टीवी पे या कहीं पे कोई विज्ञापन देखा है सुना है तो उस चीज को सीधे हम अपने घर में लाने के बारे में क्यों सोचने लगते हैं। और कंपनी देखिए, अगर एक ही चीज, एक ही कोई उदाहरण लीजिए, साबुन ले लीजिए, टूथपेस्ट ले लीजिए, एक ही चीज में आपको हजारों कंपनियां मिल जाएंगे, हजारों उत्पाद मिल जाएंगे। हर कोई अपने को बेहतर बनाता है, अपने बेचने के होड़ में लगा हुआ है, लेकिन हमारा जो हास हो रहा है उसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो ये उपभोक्ता होने के नाते, ग्राहक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समझें हमें वास्तव में इन चीजों के चंगुल में फंसना है नहीं फंसना है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब हमको समझना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो निबंध था उपभोक्तावाद की संस्कृति, श्यामचरण दुबे द्वारा रचित, ये पूरा होता है। इसके जो प्रश्न अभ्यास है उसे हम अगले ऑडियो में पूरा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।